आज की बात। श्रोताओ, कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अहमद अब्बास। कार्यक्रम में हम बात करेंगे भारत में इनकाउंटर की घटनाओं की। भारत में वैसे तो पुलिस मुठभेड़ की घटनाएं सभी क्षेत्रों में होती रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। हालिया दिनों उत्तर प्रदेश में पुलिस मुठभेड़ की बहुत अधिक घटनाएं हुई और यहीं से ये बहस भी छिड़ गई कि ये मुठभेड़ फर्जी तो नहीं है, क्योंकि गत 3 फरवरी को कथित रूप से फर्जी मुठभेड़ की घटना हुई। ये घटना उत्तर प्रदेश के नोएडा में हुई, जहां एक प्रशिक्षु पुलिस अधिकारी ने फर्जी एनकाउंटर कर दिया। पुलिस इंस्पेक्टर की गोली से घायल जितेंद्र यादव के भाई और दोस्त मीडिया में ये सफाई दे रहे थे कि नोएडा में जिम चलाने वाले जितेंद्र की ना तो किसी से कोई रंजिश थी और ना ही उन्होंने कभी कोई आपराधिक कृत्य किया था कि पुलिस उन पर हाथ डाले, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने उनका इनकाउंटर कर दिया। इस मामले में नोएडा के SSP ने तत्काल कार्रवाई की। विजय दर्शन नाम के जिस इंस्पेक्टर पर जितेंद्र को गोली मारने का आरोप था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया और 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। पुलिस अधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि ये इनकाउंटर का मामला नहीं था, बल्कि दरोगा ने आपसी रंजिश के चलते जितेंद्र को गोली मार दी थी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने कड़ी कार्यवाही करने के इशारे दिए थे और बार बार कह रही थी कि अपराधियों को नहीं बख्शा जाएगा, मगर जिस तरह 10 महीनों में एनकाउंटर की 1142 घटनाएं हुई, उससे इस बारे में सवाल उठने लगे, क्योंकि एनकाउंटर में जितेंद्र जैसे ही कुछ बेगुनाह लोग भी निशाना बने हैं। रिपोर्टों पर नज़र डाली जाए तो पता चलता है कि पिछले साल सुमित गुर्जर के एनकाउंटर को लेकर काफ़ी हंगामा हुआ था और लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था। 18 जनवरी को मथुरा में एनकाउंटर के दौरान एक बच्चे की गोली लगने से मौत हो गई थी। नोएडा में ही 15 सितंबर को मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 3 कथित बदमाशों को पकड़ा था। इनमें से एक व्यक्ति आजम को गोली लगी थी, जिसके विरोध में उनके परिजनों ने SSP ऑफिस पर प्रदर्शन किया था। परिवार वालों का आरोप था कि आजम को पहले पकड़ा गया, फिर गोली मारी गई। नोएडा के अलावा मेरठ, आगरा, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, कानपुर जोन में भी अब तक मुठभेड़ की अनेक घटनाएं हो चुकी हैं और अनेक घटनाओं पर अनेक प्रकार के सवाल भी उठ चुके हैं। लगातार होने वाली मुठभेड़ों पर न सिर्फ विधानसभा और संसद में हंगामा हुआ, बल्कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी सवाल उठाए, मगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुलिस का बचाव करते हैं।
हमारा एक कांस्टेबल सुबह सुबह ड्यूटी से आ रहा था आगरा के पास, उसको गोली मार दी गई थी। ये सुबह की घटना थी, तो मैंने सुबह 7 बजे ही पूछा, मैंने कहा ये घटना कैसे घटित हुई, पूरी रिपोर्ट मैंने तलब की। बाद में पता लगा कि खनन माफिया इसके पीछे थे, क्योंकि उसके द्वारा खनन रोका जा रहा था। हमने कहा ढूंढो कौन लोग हैं ये। हमारा एक सब इंस्पेक्टर चित्रकूट में डकैतों से मुठभेड़ करते हुए शहीद होता है। मैंने पूछा भी अभी भी डकैत हैं क्या, कि हाँ 3 डकैतों के गिरोह चित्रकूट और बुंदेलखंड क्षेत्र में सक्रिय हैं। ऐसे ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग अलग माफिया गिरोह सक्रिय होकर के पूरी व्यवस्था को चैलेंज कर रहे थे। कोई इलीगल स्लॉटरिंग में था, कोई माइनिंग में था, कोई अन्य उसमें था, पूरी अव्यवस्था थी। पैरेलल उनकी व्यवस्था चलती थी और अगर कहीं प्रशासन कार्रवाई करता था तो चीफ मिनिस्टर के यहाँ से स्टेट प्लेन आकर उन अपराधियों को लखनऊ में मैमांडित कर दिया जाता था। हमने कहा सब तो बंद होना चाहिए, तो नहीं चलेगा। तो पहला अभियान हम लोगों ने चाहा कि बुंदेलखंड से ही शुरुआत हो। तीनों डकैत गिरोह आज के दिन पे पूरी तरह साफ हो चुके हैं। मुझे लगता है कि जो धरती पर कुछ तो नहीं है, जो है तो जेल के अंदर सड़ रहे हैं। देखिए हम लोग मानवाधिकारों का नहीं, हम लोग तो मनुष्य तो एक सर्वश्रेष्ठ कृति ईश्वर की है, और ये मान करके चलें कि जीव जंतु में भी ईश्वर का अंश हम लोग देखते हैं। इसलिए सरकारों ने व्यवस्था को अधिकाधिक भ्रष्ट बना दिया था, पंगु बना दिया था, और इन स्थितियों में भी जिस स्टेट में 1.5 लाख पुलिस के कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के पद खाली हों, उस स्टेट को मुझे प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा भी प्रदान करनी है, और उस स्टेट को जो देश का सबसे अराजक प्रदेश रहा हो, जहां हर दूसरे दिन एक बड़ा दंगा होता था, जहां पर सरेआम अपहरण हो जाता था, जहां पर सरेआम अपहरण एक उद्योग के रूप में फल फूल रहा था, जहां पर किसी बहन बेटी की कोई इज्जत नहीं थी, जहां पर कोई व्यापारी कभी अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था, उस राज्य में तो कुछ तो मुझे मानक तय करने होंगे।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी विवादित सोच और विचारों के लिए बहुत पहले से आलोचना का निशाना बनते रहे हैं। उन पर अनेक आपराधिक मामले भी दर्ज हो चुके हैं, जिनमें बड़े गंभीर मामले भी हैं। योगी आदित्यनाथ अनेक अवसरों पर इस प्रकार की बातें भी करते रहे हैं, जिससे ये लगता था कि वो खुद को कानून से ऊपर समझते हैं। योगी आदित्यनाथ पर गंभीर रूप से सांप्रदायिक होने और सांप्रदायिकता भड़काने के आरोप हैं।
मैंने कहा है कि अगर एक को मारोगे तो फिर भाई उसका तो ये होगा ही, अगर आप मारेंगे तो ये उम्मीद मत करिए कि आप सुरक्षित रहेंगे। हम कानून की बात कर रहे हैं ना, हमारी जो भी बातें कंडीशनल हैं। अगर आप शांति से रहेंगे तो हम भी शांति से रहेंगे, आप विकास पर ध्यान देंगे तो हम तो विकास में आपको और सपोर्ट करने वाले हैं। अगर बसरते अगला पक्ष शांति से रहेगा तो मुझे प्रसन्नता होगी उसके विकास करने में योगदान देने में। शांति से नहीं रहेगा तो उसको शांति से रहना सिखाएंगे। जो जिस भाषा को समझेगा उस भाषा से समझाएंगे, कहा ना, जो जिस भाषा को समझेगा उस भाषा में जवाब देंगे।
उत्तर प्रदेश में पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह कहते हैं कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अपराधियों पर लगाम लगाना जरूरी है और इस दौरान आत्मरक्षा में पुलिस को कई बार हथियार भी उठाना पड़ता है। वहीं जानकारों का कहना है कि मुठभेड़ की इतनी घटनाएं मुख्यमंत्री की अपराधियों को बार बार दी गई चेतावनी को देखते हुए भी हो रही है, ताकि पुलिस अधिकारी मुख्यमंत्री की नजर में आ सके और पुरस्कार जीत सके। कुछ टीकाकार यहां तक कहते रहे हैं कि पुरस्कार के लालच में कई बार पुलिस अधिकारी और पुलिस कर्मचारी गलत रूप से और फर्जी रूप से मुठभेड़ की घटनाएं अंजाम देते रहे हैं। साउथ एशिया ह्यूमन राइट्स डॉक्यूमेंटेशन सेंटर के कार्यकारी अधिकारी रवि नायर एनकाउंटर की घटनाओं की कड़ी आलोचना करते हैं और उनका मानना है कि ये एक्स्ट्रा जुडिशियल हत्या है जिस पर अंकुश लगाना चाहिए।
बिल्कुल सरासर गलत है। ये जो फर्जी मुठभेड़ है और जिसको हम लोग अंग्रेजी में एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशंस कहते हैं, इसका प्रकरण यूपी में बहुत ज़्यादा है, आज से नहीं कुछ करीब 40 साल से। और 2001 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खुद कहा है कि अगर इसको रोका नहीं जाए, इस पर कुछ रोकथाम न किया जाए, तो पूरा जो न्यायिक व्यवस्था उसको हम लोग कमज़ोर करेंगे। लेकिन इसका कुछ प्रशासन ने कुछ खास इस पर निगरानी नहीं रखी और ये प्रक्रिया चलता रहा। एनकाउंटर तो अपने आप नहीं होता, एनकाउंटर माने दोनों तरफ से हो रहा है ये, लेकिन ये फॉल्स एनकाउंटर है, फर्जी मुठभेड़ है। हम करीब 2015 में NHRC मानवाधिकार जो आयोग है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने, उन्होंने एक रपट निकाली एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशंस का और 2250 केस उन्होंने स्टडी किया, उसका अध्ययन किया और उसमें से उन्होंने पता लगा कि 1550 के अधिक केसों में बिल्कुल फर्जी मुठभेड़ थे। जरूरी नहीं थे कि वो उसमें असल में दोनों तरफ से फायरिंग हुई थी और एक घायल हुआ और एक मर गया, ऐसा नहीं था। लोगों को लेके नहर के किनारे और पीछे से बंदूक से गोली दाग दी। तो ये फर्जी मुठभेड़ अलग होता है एनकाउंटर से, मुठभेड़ से। फर्जी मुठभेड़ को ही हम कहते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशन।
नायर का ये भी कहना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुलिस एनकाउंटर के मामले में जो कुछ कह रहे हैं उस पर उनके खिलाफ भी मुकदमा दायर कर देना चाहिए,
उनके खिलाफ केस दायर करके चलाना चाहिए। ये बिल्कुल कानून के विपरीत है और संविधान के अनुच्छेद 21 के विपरीत है। और जो अंतर्राष्ट्रीय संधि हम लोगों ने साइन किया है, इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, आर्टिकल 6 के भी बिल्कुल विरुद्ध है। तो अगर सरकार अगर हमारी निष्पक्ष होती और कानून के साथ वफादारी दिखाना चाहती है तो योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ तुरंत केस दायर करना चाहिए और मुकदमा चलना चाहिए।
कुछ टीकाकार ये भी कहते हैं कि यूपी में एनकाउंटर की संख्या में तब बढ़ोतरी हुई जब बदमाशों को मुठभेड़ में मारने वाले पुलिसकर्मियों को आउट ऑफ टर्म प्रमोशन का लालच दिखाया गया। कई पुलिसकर्मियों को ये फायदा मिला लेकिन बाद में हाईकोर्ट के हस्तक्षेप से आउट ऑफ टर्म प्रमोशन पर रोक लग गई, जिसके बाद से एनकाउंटर की रफ्तार भी धीमी हो गई। बहरहाल अपराधों पर अंकुश लगाना जरूरी है क्योंकि इससे समाज की शांति और चैन व सुकून जुड़ा होता है, लेकिन विशेषज्ञों का ये मानना है कि एनकाउंटर को समस्या का समाधान नहीं माना जा सकता। किसी को भी सजा देने का अधिकार सरकार या पुलिस प्रशासन के पास नहीं बल्कि न्यायपालिका के पास होता है, इसलिए इस प्रकार के मामले पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है, विशेष रूप से ऐसे समय में जब इस प्रकार की खबरें आ रही हैं कि बड़ी संख्या में फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं और इसमें उत्तर प्रदेश राज्य का रिकॉर्ड काफ़ी ख़राब बताया जाता है।